نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کی مدد کی اور ان کو پناہ دی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے تم میں سے جن کے اور تمہارے درمیان عہد و پیمان ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے. کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، پس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناطے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ سورت انفال کی بالکل آخری آیتیں ہیں، پورا رکوع ہے، اور اس کی روشنی میں آپ کو اندازہ ترجمے سے ہو رہا ہوگا کہ صحابہ کرام کی تعریف کی گئی اور دو گروہ مہاجرین اور انصار. یہ کہانی کسی کے لیے کوئی نئی نہیں کہ جب مسلمانوں میں مکہ میں ان کے لیے حالات تنگ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک گروہ کے ساتھ، جو بھی اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، 100 سے کچھ لوگ تھے زائد، ان کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، مال چھوڑے، کاروبار چھوڑے، اللہ کے راستے میں قربانیاں دی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس کی عملی مثال بنی یہ چیز. آج تک تاریخ میں اتنی بڑی قربانی کسی نے نہیں دیکھی، کسی مذہب میں، کسی عزم میں، کہ لوگوں نے اس طرح اللہ کے نام پہ ہجرت کی. اور بہت وجوہات سے ہجرتیں ہوئیں، قومیت کے نام پہ، مال کمانے کے لیے ہجرت، ماحول بدلنے کے لیے، اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے، لیکن صرف اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی یہ مثال بڑی ہی خوبصورت تھی. اس آیت میں مختلف طرح سے صحابہ کرام کے مختلف گروہوں کا ذکر ہوا. کچھ وہ تھے جنہوں نے جہاد کی، یعنی ہجرت کی دعوت سنتے ہی فوراً لبیک کہا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم مان گئے، یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ ہم نے کتنی محنت سے کمایا تھا، آگے جا کے کیا کریں گے، چل پڑے. اور آگے کوئی منزل بھی نہیں تھی. یہ تو آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ مدینہ میں آ کے اتنی فتح ہوئی اور اتنی مدد ہوئی، لیکن اس وقت تک تو ایک تاریک راستہ تھا. یہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم میں سے کوئی، اللہ نہ کرے، کسی کو اچانک کہا جائے کہ اس ملک کو چھوڑ دو، اور اس کو نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں، کیا ہوگا، نہ کسی کی جان، نہ پہچان، نہ اس شہر میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، نہ آپ کا گھر، نہ کاروبار، کیا دل پہ گزرے گی. कितनी मिन्नतें और समाजते होंगी कि कोई हमें यहाँ रहने दे। सहाबे कराम ने ये कुर्बानी दी कि जिसमें उनको कुछ भी नहीं पता था कि मदीना में क्या होगा। इससे पहले चंद लोग जो बैत उकबा और बैत उकबा सानी के मौके पे नबी सल्लम से मुलाकात कर चुके थे, लेकिन याद रखिए कि उनकी अभी मक्का के आम लोगों से दोस्तियां नहीं हुई थी। कोई उनको नहीं कहा था तुम आना मेरे घर मिलने, तुम आना मैं तुम्हें रखूंगी अपने घर, कुछ नहीं पता था। आम पब्लिक को कुछ नहीं पता था कि कल हमारे साथ क्या होगा। नबी सल्लम को उनके साथ बात करके और उनसे ये इत्मीनान था कि ये लोग अच्छा करेंगे, लेकिन जितना अच्छा उन्होंने किया ये तो नबी सल्लम को भी शायद इसका अंदाजा ना होगा कि इंसानियत की कुर्बानी की वो मिसाल कायम हुई कि अंसार ने अपने घर पेश कर दिए, अपने माल पेश कर दिए, और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ माल की नहीं जज्बात की कुर्बानी तक दी, और कहा कि अपने महाजर भाई से कहा कि मेरी बीवियों में से जिसको तुम चाहो मैं उसको तलाक दे देता हूं, इद्दत पूरी करेगी तो तुम उससे निकाह कर लेना। कैसी मिसाल है। ये नहीं कि बीवी से झगड़ा, ये नहीं कहा कि इन दो या तीन में से फुला मुझे अच्छी नहीं लगती इससे मेरा झगड़ा है इसको तलाक देता हूँ। क्या कहा, जिसको तुम चाहो उसको मैं तलाक देता हूँ। और वो बीवियां भी समझदार थी, उनको यकीन था कि हमारी बीवियां शोर नहीं मचा देंगी इस पे, हमारे इस मिशन में वो कामयाब होंगी। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी बीवियां तुम्हें मुबारक, अपनी जायदादों के मुंह खोल दिए, बोलो कौन सी जायदाद पसंद है, जो चाहो मैं तुम्हारे नाम लगा दूं, अपने कारोबार तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो और बाकी मेरा। लेकिन अगर उनके दिल बड़े थे तो जो हिजरत करके गए थे उनके भी दिल कुछ छोटे नहीं थे, उन्होंने भी दुनिया के फायदों के लिए हिजरत नहीं की। अब्दुर्रहमान बिन औफ जब गए और उनके पास जो अंसारी भाई थे उन्होंने कहा कि देखो ये आधी तिजारत का माल तुम ले लो और आधा मुझे दे दो, आधा मैं रखता हूँ आधा तुम ले लो। कहा कि नहीं, दल्लूनी अला सूखी है, मुझे बाजार की खबर दो, बाजार किधर है। कारोबारी शख्स से मेहनत करनी आती थी और गए और वहां जाके इन्होंने काम शुरू किया, पनीर का काम शुरू किया अपनी मेहनत से। और आपको पता है चंद महीने में कितनी बरकत हुई कि 700 ऊंटों पे इनका सामान के काफले आते थे, एक जगह से दूसरे जाते थे। थोड़े दिन गुजरे, नबी सल्लम ने उनको देखा तो जिस कपड़ों पे रंग था, उस दौर का एक ट्रेडिशन थी कि जब किसी की शादी होती थी तो उसके कपड़े पे कोई जर्द किस्म का रंग कोई लगा लेते थे, पता चल जाता था निकाह का ऐलान का। नबी सल्लम ने उनकी रंग को देख के कहा कि क्या तुमने शादी कर ली, तो कहा जी नबी सल्लम शादी कर ली। आपने ये नहीं कहा अच्छा हमें तो बुलाया ही नहीं, बड़े कैसी मोहब्बत है हमसे, कैसी दोस्ती है इस दिन के लिए, आज पता चला तुम्हारे दिल में हमारे लिए क्या है। नहीं, जो बड़े होते हैं ना उनके दिल भी बड़े होते हैं, उनके गम छोटे छोटे नहीं होते, और वो अपनी जात के लिए नहीं पूछते। वो इस पे तो शायद खफा हों कि मस्जिद में तुम आते हो कि नहीं आते, अल्लाह के दीन के लिए तुम आते हो कि नहीं आते, वहां हमें बुलाते हो कि नहीं बुलाते, अपनी जात छोटी, फिर क्या हुआ। आपने कहा अच्छा अवलिम बिशाते, बस वलीमा कर लेना चाहे एक बकरी का करना। यदि ऐसी ऐसी मिसालें आई, और आपको पता है कि इस मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मवाखात किससे कायम हुई थी। चले बोनस सवाल है, हाथ खड़ा करें, आपको एक सीडी गिफ्ट में जी। तस्नीम और कोई, किसी और का हाथ, अगर मैंने बताया तो फिर आपको मुझे देनी पड़ेगी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। इसकी वजह पता है आपको क्या थी, किसी को वजह चले पता है उस पर भी मिल जाएगी सीढ़ी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए कोई अंसारी साथी नहीं मिला था, अकेले थे। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली तुम मेरे भाई हो और तुम्हें मुझसे वही निस्बत है जो मूसा को हारून से थी। और आपको पता है हजरत अली के लिए यह एजाज कितना बड़ा था, कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, फिर आप मेरी बात मानिए, और वो क्या है कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं जो आप अपने दीन का काम करें, आप मस्जिद नबवी को संभालें, मैं मेहनत करूंगा और जो मुझे दिन भर की मजदूरी मिलेगी वो आधी मैं आपको दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, शर्माए नहीं, हमारी तरह झूठा तकल्लुफ नहीं किया, कहा ठीक है। अगर ऐसा तो ऐसो। और हजरत अली गए रजी अल्लाह अन्हु, किसी का घर बन रहा था तो ईंटें ढोने का काम किया, पानी लाना था वहां, मतलब कुछ इस तरह के काम की मदद थी। सारे दिन में सिर्फ 16 गैलन पानी ला सके और हर एक पे उनको एक खजूर मिली। जब शाम हुई तो 16 खजूरों में से 8 अपनी मुट्ठी में भर के आए और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे भाई के लिए है। यानी कुर्बानी की मिसालें देखें। अबू अय्यूब अंसारी का अपने नाम लिया तो मुझे वो वाक्य भी याद आ रहा है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए, मदीना में साद बिन मास जैसे सरदार भी मौजूद थे, उसैद बिन जरारा, बड़े बड़े लीडर वहां भी थे, दौलतमंद लोग थे। हर एक तवक्को कर रहा है कि पता नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आएंगे, किसके घर आएंगे। उन उम्मीद करने वालों में और उस मेहमानी की ख्वाहिश दिल में रखने, मेजबानी की ख्वाहिश दिल में रखने वालों में से एक अबू अय्यूब अंसारी भी थे, गरीब सहाबी थे, अपनी बीवी से बैठ के दुख सुख कर रहे हैं, खुसर बुसर कर रहे हैं। मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह का नबी मेरे घर में आए, तो बीवी कहते तुम्हारे घर में आएंगे, लो सबको छोड़ के आएंगे। कहा नहीं, एक बहुत प्यारा वाक्य है उनका, सच्ची तड़प थी दिल में लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। याद रखिए हमारा काम सिर्फ तड़पना है, अंदर तड़प होती है ना अल्लाह ताला काम खुद ही करा लेता है, शोर नहीं मचाते, बस सच्ची नीयत होती है और फिर अमली कदम करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं कुछ, उनको भी नहीं पता। अब हर बंदा आपकी ऊंटनी को देख रहा है, कुस्वा जिसपे आप जा रहे हैं, तलाउ बद्रु अलैना, खुशखबरी की आवाजें हैं, नबी सल्लम का इस्तकबाल हो रहा है, आप हमारे घर आइए, आप आइए, आप आइए। आपने कहा नहीं, मैं वहीं जाऊंगा जहां अल्लाह के हुक्म से मेरी कुस्वा जाएगी। और फिर नतीजा क्या हुआ कि वो गई और अबू अय्यूब अंसारी के घर से आगे गुजर गई। अबू अय्यूब अंसारी का दिल बुझ गया, मेरे घर तो नहीं जा रहे। फिर आगे गई, फिर ऊंटनी वापस आई और वो जगह जहां से जाके वापस आई वो जगह बाद में मस्जिद नबी के लिए बनी और बिलाखिर ऊंटनी अबू अय्यूब अंसारी के घर के आगे बैठ गई। उनको यकीन नहीं आ रहा था, ऐसा यकीन वाकई उन लोगों को नहीं आता जिनके दिल में मोहब्बत भी होती है और कदर भी होती है। कुछ लोग हैं ना कभी बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं। कल मेरी किसी से बात हुई, किसी स्टूडेंट है ऑनलाइन, तो उनके घर में जाने का कुछ प्रोग्राम बन रहा है, तो कल मुझे कहने लगी कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये सच है या झूठ है। मैं अपने मियाँ को कह रही हूँ कि वाकई क्या मेरी उस्ताद मेरे घर आएंगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा देखे मेरे प्लान में नहीं था लेकिन आपकी तड़प कोई सच्ची थी कि अल्लाह ने ऐसा रास्ता बनाया कि मैं आऊंगी आपके पास। यानी अबू अय्यूब अंसारी का दिल कैसा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आए तो कहने लगे अल्लाह के नबी। अच्छा तैयारी पहले से करके रखी हुई थी कि शायद आ जाए, जैसे हम भी होते हैं ना कभी कभी ख्वाहिश करते हैं तो थोड़ी सी तैयारी करते हैं। आए तो कहने लगे कि नबी सल्लम आपके लिए मैंने अपने घर का ऊपर वाला कमरा खास किया है, आप ऊपर तशरीफ ले जाएं, मैं नीचे रहूंगा। नबी सल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं नीचे ठीक हूं, आप ऊपर जाइए, क्योंकि लोग मुझे मिलने आएंगे और अपनी उम्र की वजह से, जिस्म की वजह से उन्होंने नीचे रहना पसंद किया। अब नबी के आगे कौन मिले, कहा ठीक है। अब नबी सल्लम नीचे हैं और अबू अय्यूब अंसारी ऊपर, और आपको पता क्या कहा, किसी को पता है? उनकी बीवी ने गवाही दी अगले दिन, कहा कि सारी रात अबू अय्यूब अंसारी कमरे के बीच में नहीं आए, किनारे पे दीवार के साथ चिपक के बैठे रहे कि मुझे गवारा नहीं कि मैं ऊपर हूं और मेरा नबी नीचे। इतनी असर, इतनी मोहब्बत, इतना अदब। नबी सल्लम को खाना बना के भेजते, प्लेट भेजते खाने की, और आप नोश फरमाए, नबी सल्लम खा लेते, फिर जब वापस जाती तो बचे हुए में से खाते। आपको भी पता था कि ये खाएंगे, उस दौर में कोई बुरा भी नहीं था। और अबू अय्यूब अंसारी प्लेट में से ढूंढते कहाँ कहाँ नबी सल्लम की उंगलियों के निशान और उसके ऊपर अपनी उंगलियों के निशान फेरते। मोहब्बत वल्लज़ीना, वो जगह थी मोहब्बतें की, मुकाम ले गए। आज भी वो गरीब मिस्कीन सहाबी, उनका जिक्र इस नाम से आ गया कि वो नबी सल्लम का पहला मेजबान बने मदीना में। कितनी खैर फूटी आगे, क्या नहीं हुआ। ये कौन से जज्बे थे, ये वो जज्बे थे जिसकी सदाकत अल्लाह ताला ने इन आयात में फरमाई और कहा कि उलाइकल्लज़ीना सदकू, ये हैं सच्चे, व उलाइकहुमुल मोमिनूना हक्का, ये सच्चे मोमिन थे। मैं जब सहाबे कराम को देखती हूँ और ये सारी आयतें पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आज सहाबे कराम में और आज के मुसलमानों में फर्क क्या है, कोई फर्क दिखता, फर्क है कि नहीं। वो भी मुसलमान थे, आज हम भी मुसलमान हैं। वो भी वो जन्नत तलब करते थे, वही जन्नत हम मांगते हैं। मैं सोचती हूँ ए अल्लाह, क्या वाकई हम उसी जन्नत में जाएंगे जिसमें अबू बकर सिद्दीक जाएंगे, जिसमें उमर फारूक जाएंगे, जिसमें उस्मान गनी जाएंगे? अगर वो ही जन्नत है तो फिर क्या वो कोशिशें हैं? क्या उलाइकहुमुल मोमिनूना हक्का। अल्लाह ताला ये आयतें, अभी मैंने चूंकि तफसीर नहीं है ना और मैं इसका लफ्जी नहीं कर रही, इतनी खूबसूरत आयतें हैं तफसीर के एतबार से। चार गिरोहों का अल्लाह ताला ने जिक्र पेश कर दिया, मुहाजरीन, अंसार, फिर मुहाजरीन में से वो जिन्होंने सबसे पहले हुक्म पे लबैक कह दिया, फिर उससे अगला नीचे का दर्जा उनका है जिन्होंने की हिजरत लेकिन थोड़ी देर से की, चलो देखते हैं क्या होता है फिर जाएंगे, बाद में जाएंगे। कहा वो पहलों के अजर को नहीं पा सकते। फिर अंसार वो जिन्होंने दामन खोल दिए, दिल खोल दिए, उनका दर्जा, और जिन्होंने सोच सोच के बाद में खोला उनके बाद, यानी जो जिस दिल से आया अल्लाह ने उस मोहब्बत से कबूल किया। तो फर्क क्या ही लगता है कि वो लोग कुर्बानी की सतह पे जिए, अजम की राह पे जिए। याद रखिए कि जिंदगी गुजारने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फराइज की हद पे जीना, इसको जहन में रख ले बाद में लिख लीजिएगा, फराइज की हद पे जीना, और दूसरा होता है अजम की राह पे जीना, अजमियत। फराइज की हद क्या है? फराइज पूरे करो, पांच वक्त की नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, घर देखो, शोहर की खिदमत, बीवी का ख्याल रखो, यानी जो अल्लाह ताला ने लाइबिलिटीज जिंदगी में रखी है उसकी सतह पे जियो। बहुत अच्छी जिंदगी है वल्लाही, कोई कमी नहीं जिंदगी में। इंशाल्लाह आपने तो खुद नबी सल्लम ने खुशखबरी दे दी कि जो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले, अपने शोहर की अताज शोहर हो, वो जन्नत में जिस दरवाजे से मर्जी जाए जाएगी, वो जन्नत में कोई शक नहीं। लेकिन ये फराइज का रास्ता है और ऐसे लोग बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ऐसे लोगों को बहुत मौके दिए हैं अपनी घरों को जन्नत बनाने के। लेकिन एक उससे अगला दर्जा होता है जो अज़्म के साथ जीते हैं, जो बड़े हौसलों के साथ जीते हैं, वो उन चीजों को भी अपने पर फर्ज कर लेते हैं जो उन पर फर्ज नहीं होती। इन्नी नजर तुलक माफी बतनी मुहर्ररा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की मां ने कुर्बानी की, एक मन्नत मानी, ए अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसको तेरे नाम करती हूँ, 9 महीने अपने पेट में रख के भी अपना नहीं समझूंगी, तेरे काम पे खास कर देती हूँ। और कब मन्नत मानी? जब शोहर भी नहीं, पता ना आपको, बेवा थी, शोहर का इंतकाल पहले से हो चुका। ऐसी औरत अमूमन महरूमियों का शिकार हो जाती है, लेकिन उस माँ ने मन्नत मानी। फिर पैदा हुई तो बेटी हुई, कहती चलो छोड़ो, नियत तो कर ली थी, अब हमने तो कह दिया था, फिर करना होता तो हो जाता, इनकी मर्जी नहीं थी। नहीं, कहा अल्लाह ताला ये क्या हो गया, बेटी पैदा हो गई, पीछे नहीं हटी? कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने एक ऐसी रिवायत कायम कर दी उनके नाते से कि उसके बाद से फिर बैतुल मकदस में औरतें भी इबादत के लिए जाने लगी। तो बात क्या है साथियों कि अल्लाह ताला कभी भी किसी का कोई अजर जाया नहीं करता। जो बंदे से, रब से जो जिंदगी मांगता है ना, उसको वही मिलती है। बाज लोग ये होते हैं, वो कहते हैं कि देना पड़ेगा, और बाज होते हैं उनको फिक्र क्या होती है कि मेरा दिया हुआ कबूल होगा कि नहीं, मेरा ले लिया जाएगा कि नहीं, ऐसा होता कि नहीं? बाज जगह आप किसी को तोहफा देते हैं तो आपको फिक्र क्या होती है, हाय तोहफा देना पड़ेगा, क्या दूं, जान छुड़ाऊं, बस सब देना है, मजबूरी है। और बाज जगह आप इतनी मोहब्बत से देते हैं, इतनी प्यार से देते हैं और साथ दिल धक धक कर रहा होता है, रख लेंगे ये, कबूल कर लेंगे ये, इनको पसंद आ जाएगा ये। यही है दो मुख्तलिफ रवैये। जो अजीमत के साथ जीते हैं वो हर वक्त नेकियां कर करके भी इस गम में मुबतला होते हैं कि कबूल हुई कि नहीं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह कबूल कर ले, हमने तो कर ली कोशिश, तो कर ली नियत, तो कर ली, अब कबूल तू करना। और बास होते हैं कि बस उनको फिक्र क्या होती है कि वो अपनी दुनिया बना ले। मैं जब इन आयात को देखती हूँ तो सहाबे कराम की को जो रिगार्ड देने को दिल चाहता है ना, जो उनको कमेंट्स देने को दिल चाहता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी को लेने की इतनी हिरस नहीं हो सकती जितनी उनको देने की थी। सही सुना आपने, किसी को लेने की इतनी हिरस नहीं हो सकती जितनी उनको देने की थी। और याद रखिए कि ऐसे ही लोग तारीख साज होते हैं। हम क्या हैं? खुद साज। सहाबे कराम थे तारीख साज, उन्होंने तारीख रकम की, قربانیوں سے اپنے مقصد کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر کے, اور ہم کس کو بنا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. یہ فرق ہے. آج کا مسلمان خود کو بنا رہا ہے, انہوں نے تاریخ بنائی. وہ اسلام کے لیے جیتے تھے, ہم اپنے نام کے لیے جیتے ہیں. انہوں نے ایک عہد کیا تھا بیت عقبہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیے, ہم دل اور جان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور پھر اس کا ثبوت کیسے دیا؟ اپنے عمل سے دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد پھر دل میں اور محبتیں, اور خواہشیں, اور خوف, اور ڈر, اور باتیں تھیں. پھر آپ دیکھیں, آپ کہیں گے ہاں کوئی نہیں, دوستی ہوتی ہے تو بندہ دیتا ہی ہے. پھر کیا ہوا اگر ایک انصار نے ایک مہاجر کو دے دیا؟ تو یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ انصار کو جو مہاجر کا ملا تھا نا بھائی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا تھا. آپ نے جس کو چاہا جس سے بنا دیا, یہ ان کی جذباتی محبتوں کی بنیاد پہ نہیں تھا کہ بس تم کس کو پسند کرتے ہو. ہم چوز کرتے ہیں نا, مثلا اگر آپ کے کہوں میں دو گروپ بنا لیں آپ سے, آپ کس کو گروپ بنانا چاہتی ہیں؟ اپنا بنا لیں اپنا پیئر. انہوں نے نہیں چنے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنوائے تھے. 186 مہاجر تھے جن کی پھر 185 کے ساتھ سمجھے انصار سے ملے, یعنی 200 سے بھی کم لوگ تھے جہاں سے اس دنیا میں, اس گلوب میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی. معلوم ہے نا آپ کو, مدینہ اس گلوب پہ پہلی مسلمان ریاست ہے, اسلام کے نام پہ قائم ہونے والا پہلا ملک. 186 ڈبل کر لیں, کتنے مسلمان تھے, اقلیت. اور کیا انقلاب برپا کیا؟ کہ وہ کام جو 13 سال کے مکی دور میں نہ ہو سکا, وہ مدینہ کے 10 تو نہیں, مکہ تو 8 سال میں فتح ہو گیا تھا, اور 6 سال میں مکہ مشرکین جو تھے وہ صلح حدیبیہ کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے. صرف 6 سال کے اندر ایک ایسا اسلام کے لیے, پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ بکھر گیا اسلام, پھیلا جیسے ہاتھ میں دانے لے کے کوئی یوں پھیلاتا ہے نا, وہ پھیل گئے. اور اس میں کوششیں کن کی تھی؟ 186 لوگوں کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا کسی کو معلوم ہے کتنے صحابہ کرام تھے؟ تقریباً 2 سے 3 لاکھ کے بیچ میں تھے. مکہ سے کتنے نکلے؟ 13 سال میں کتنے جمع ہوئے؟ 186 اور کچھ عورتیں بچے کمزور وہ حاضر لگا لیں 13 سال میں. اور مدینہ میں گئے تو کتنے ملے؟ فرق کس بات کا ہے؟ مکہ میں اپنے تھے, اپنے گھر خاندان برادریوں سے چپکے ہوئے تھے, مکہ سارا آپ کا آبائی وطن تھا. اگر وہ محبتوں کی قربانی نہ دیتے وہ 186 مہاجر, تو اسلام کو اتنا کچھ ملتا؟ ہوتا بھی ایسے ہی ہے, تھوڑے سے لوگوں کی قربانی پوری قومیت کے لیے ایک خیر لاتی ہے. تھوڑے لوگوں کا خون جاتا ہے بنیادوں میں تو رنگ آتا ہے ساری دنیا پہ. کسی بھی کام کی ابتدا میں تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں, اگر وہ تھوڑے اپنے مشن میں سچے ہوں نا, اور اپنے مقصد میں سچے ہوں, خلوص ہو اور طریقہ کار درست ہو. 4 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی کام کو بہتر کرنے کی, چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو. لوگوں سے نہیں بڑھتا, یاد رکھیے, لوگوں کے تو ہجوم ہیں. جا کے دیکھیے ذرا, بڑے بڑے میلوں ٹھیلوں میں دیکھیے, آپ کو پتا چلے گا کتنے لوگ ہیں, کتنے مسلمان ہیں یہاں. اور مسجد میں دیکھ لیں کیا فرق ہے. زیادہ تھوڑے کی بات نہیں ہوتی, اصل بات کیا ہے کہ نیت کیا ہے. پہلی چیز جو کسی سے اچھا کام کراتی ہے وہ ہے مقصد. آپ کو اپنا مقصد پتا ہو, میرا مقصد کیا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اخلاص, خلوص, اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کا دین ہے, میرا نہیں ہے, یہ کسی کا ذاتی فائدہ نہیں ہے اس میں. اور تیسری پھر چیز ہوتی ہے طریقہ کار, جس کو ہم کہتے ہیں اسوہ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. اور پھر چوتھی چیز کیا ہوتی ہے, کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ہم عموماً آج کے دور میں مسلمان ان 3 چیزوں پہ خاموش ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہے اعمال صالحہ کی بنیاد, اخلاص اور سنت. نہیں, چوتھی چیز بھولی ہوئی آج مسلمانوں کو. میں آپ کی بات نہیں کر رہی, اپنی بھی نہیں کر رہی, ایک اوور آل پورے گلوب پہ مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. اور وہ چوتھی چیز ہے محنت, قربانی, اپنے مشن کے لیے ڈٹ جانا. کہیں اسلام مال کی قربانی مانگتا ہے؟ وہ کس سے سوال ہوگا قیامت کے دن؟ مال والوں سے. آپ کے ساتھ اگر مال نہیں ہے نا یا کم ہے, तो बेफिक्र होके खुश हो जाएं कि आप एक सवाल से बच गए, एक पर्चा आपका कम हो गया। ये तो अल्लाह उनसे पूछेगा जिनके पास माल है। आज मुसलमान क्या करते हैं, कहते हैं कि दीन के लिए पहले माल जमा करो, चंदा जमा करो, फिर बड़ी सी बिल्डिंग बनाओ। और चूंकि मेरे पास बिल्डिंग नहीं, चंदा करने की जगह, मतलब जगह नहीं, लिहाजा अब मैं दीन का काम कैसे शुरू करूं। मुझे किसी की बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं थे पैसे, मैंने दरख्त के नीचे पढ़ाना शुरू कर दिया, खुला सेन था बाहर किसी जगह का, वहां पढ़ाना शुरू कर दिया। कल अल्लाह ताला पूछेगा, मैं कह दूंगा अल्लाह ताला मेरे पास इल्म था, मैंने इल्म देना शुरू कर दिया। और अगर गैर सही जगह नहीं थी, मुनासिब नहीं थी, तो माल वालों से पूछ। ये उनका सवाल है, मुझे इसकी फिक्र क्या? मुझे तो फिक्र क्या है कि मुझे देना है। और यही लोग काम कर सकते हैं दुनिया में जो देते हैं। इस कायनात का निजाम चल रहा है देने पे। सूरज सुबह उठते ही आपको देना शुरू होता है। आपने आज तक सूरज को तो कुछ दिया? सब बताए, कुछ दिया सूरज को आज तक? एक दिन नाश्ता कराया? कुछ नहीं दिया। रोज आता है आपको रोशनी भी देता है और धूप भी देता है। हवा चलती है आपको दे रही है, बादल बरसते हैं वो आपको दे रहे हैं। रात आती है तो आपको नींद देके जाती है, सुकून देके जाती है। सुबह होती है तो आपको देती है। ये कायनात तो बरत, फूल अपनी खुशबू दे रहा है आपको, जमीन अपनी खजाने उगल उगल के हमें देती है कि खाओ और जियो। इस फितरत का निजाम चलता ही देने पे है। इसीलिए याद रखिए, दुनिया में बस वही बचेगा जो किसी को कुछ देके जाएगा। फअम्मा मा यन्फउ अन्नास, सूरत रात की आयत है कि मैं भूल नहीं रही, को चेक करके बता दे। मुझे इस आयत ने इतना मोटिवेट दिया अपनी जिंदगी के अंदर एक काम को मिशन बनाने में। हम सब जाने वाले हैं, हमने जाना है ना, मट्टी में मिल जाएंगे। चार बच्चे होंगे ना तो चार रोने वाले छोड़ जाएंगे पीछे। शौहर थोड़े दिन रोएगा फिर खत्म, उसकी तो बस उतने दिन की चोट है। एक बात बड़ी किसी की पते की बात है, कहते हैं कि बीवी की मौत शौहर के लिए कोनी की चोट होती है। लगती है तो एकदम चीख निकलती है और अगले लम्हे के बाद ठीक हो जाती है। ये तो शौहर आज मोहब्बत करते हैं ना, चोट पड़ेगी एकदम, लेकिन अगले 4 दिन के बाद ठीक हो जाएंगे। हाँ, चार बच्चे रोएंगे आपके पीछे, इसमें कोई शक नहीं। कब तक रोएंगे, कितना रोएंगे? सब्र आ जाएगा, ढारस आ जाएगी, सब खत्म। माँ दुनिया में है तो वो भी चली जाएगी। सब मोहब्बत करने वाले चले जाएंगे, बचेगा वही जो अपने पीछे कुछ छोड़ के जाएगा। जाने से पहले कुछ छोड़ के जाना है। अमूमन कोई जाता है दुनिया से तो क्या कहते हैं, क्या छोड़ के गया, ऐसे कहते हैं ना। अमूमन से हमारा क्या मुराद होता है, कितने बच्चे छोड़े, माल कितना छोड़ा, गाड़ियां कितनी छोड़ी। और फरिश्ते क्या पूछ रहे होते हैं उस वक्त, क्या लेके आया। फिक्रा लिख ले। दुनिया वाले कहते हैं क्या देके गया, और आगे वाले कहते हैं क्या लेके आया। ये है फर्क अजीमत के रास्ते में जीने वालों के और फराइज की हद पे जीने वालों की जिंदगी में। फर्क समझ में आया? फराइज में जिएंगे तो पीछे चार लोग छोड़ के जाएंगे, अजम के पीछे जाएंगे कितने छोड़ेंगे आपको पता ही नहीं। आपके सामने तो हो सकता है चार ही बैठे होंगे, 10 ही होंगे, या जिनकी आप खिदमत कर रहे हैं वो थोड़े होंगे, लेकिन आपको नहीं पता क्यामत के दिन कितनी चीजें निकलेंगी। और इंसान हैरान हो जाएगा। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान के सदके को कबूल करता है, जैसे तुम में से कोई अपने घोड़े के बच्चे को पालता है, बछेड़े को पालता है, इस तरह अल्लाह सदके को कबूल करता है। हत्ता के एक खजूर बढ़ते बढ़ते ओहद पहाड़ के बराबर हो जाती है। तो सदका माल का नहीं होता सिर्फ, सदका जान का भी होता है, सदका इल्म का भी होता है, सदका वक्त का भी होता है, सदका घर का भी होता है, सदका खुशियों का भी होता है, सदका स्टेटस का भी होता है। सदका क्या है? कोई चीज खुशी से रब के रास्ते में देना। तो क्या हम सिर्फ डोनेशन बॉक्स में $100 डाल के खुश हैं कि हमने सदका दे दिया? बाकी नेमतों का कौन पूछेगा, उसकी उसकी उसका सदका कहां से देंगे? 24 घंटे का सदका कहां से जाएगा? उम्र, जवानी, हुसन, कपड़े, आपकी नेमतें, आपकी गाड़ियां, एक एक का सदका रब मांगेगा। जिसने जो देना है वो देना है। और मैं जब सहाबे कराम के बारे में पढ़ रही थी, आपको पता है कि अबू मूसा अशरी की एक रिवायत, कहने लगे कि जंगे होती थी, यानी ये जो फिर हिजरत करके गए थे तो फिर ऐसा नहीं था कि मेज मेहमान बन के गए और ऐश ही हो रही है और उन्होंने सामने पेश किया और ये ऐश कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। आपको पता है मक्का मदीना में जाके जो मुसलमानों पे हालात आए, एक एक जंग, गजवा ज़ातुर रिका, नाम सुना हुआ, पट्टियों वाली जंग, कहा कहते हैं ये पट्टी, बैंडेज कहते हैं ना, छह छह लोग, छह या सात लोगों के इसे एक उठाया, छह लोग चल रहे होते, सातवां ऊंट पे बैठता, फिर वो थोड़ा चलता, फिर उसके बाद पहले की बारी आती, फिर बाकी छह चलते, फिर दूसरा तीसरा के पांव सूज गए, छाले पड़ गए, फिर उस पे पट्टियां बांधी और उस जंग का नाम ही पड़ गया गजबा जातुरे का, चीथड़ों वाली जंग। कहते हैं कि खाना खत्म हो गया तो बबोल के पत्ते खाते, होंठ सूज गए, एक दफा ऐसी जड़ी बूटी खा ली कि होंठ सूज के लटक गए ऊंट के होंठों की तरह। कहते हैं कि उन दिनों हम जब कजाए हाजत के लिए जाते तो हमारे जिस्म से जो गंदगी निकलती वो मेंगनियों की तरह निकलती, क्योंकि हम भी वही खाते थे जो बकरियां खाती हैं, पत्ते खाते थे। वल्लाही ये सहाबे कराम के साथ हुआ, टिड्डियां खा के गुजारे किए उन्होंने। एक मौका आया गजवे तबुक, ऊंट थे आठ लोगों के हिस्से एक ऊंट था, और एक वक्त वो आया कि वो ऊंट भी कटने लगे, जब माले गनी सब खत्म हो गया, ज़ादेरा एक महीने का दूरी थी मदीना से रूम तक, फिर वो ऊंट कटे, फिर वो ऊंट खाए। कहते हैं कि हमें वो दिन भी याद है कि ऊंट की ओजड़ी का पानी पिया। एक जंग का वाक्य कि कहते हैं कि हम खजूर खाते, एक खजूर मिलती पूरे, अमीर लश्कर सारे दिन में एक खजूर देता, हम उसको खाते और उसकी गुठली चूसते 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 जब तक कि वो गुठली ना खत्म होती। किसी ने, हजरत आयशा इस रिवायत को करती है नकल अगर मैं भूल नहीं रही, किसी ने कहा कि एक खजूर से तुम्हारा क्या बनता होगा, एक खजूर से क्या बनता होगा, तो कहने लगी हाँ ये हमें उस दिन पता चला जब वो भी ना रही, फिर पता चला कि वो क्या थी। ये लोग थे तारीख साज, इनके नाम आते हैं तारीख में, इनको लकब मिलते हैं, रदियल्लाहु अन्हुम व रदुवन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। हमें अगर एक वक्त खाने को ना मिले ना तो हम खाने को दौड़ते हैं, लोगों को भूख लगती है ना तो हम कहते हैं जो सामने आए पीछे कर दो इसको। हमारी जिंदगियां कहाँ हैं? वो माएं थी कि बच्चों की तरबियत करती थी, उनको एक वक्त देती एक वक्त भूखा रखती, क्यों कि अगर कल ना हुआ तो ये तंग नहीं करेंगे। हमने अपने बच्चों को कैसे पाला? हथेली का छाला, लाड, पूछते हैं क्या पसंद है। एक घर में चार बच्चे हैं अगर तो पांच किस्म का सीरियल टेबल पे आता है सुबह में, माँ चार खाने पका के मेज पे रखती है और बच्चा फिर फोन करके पिज्जा ही मंगाता है। याद रखिए ये मोहब्बत नहीं, हम जितना इनको खिला लेंगे ये हमें उतना नहीं रोएंगे। हाँ ये हमें तभी याद करेंगे जब हमने इनको अच्छे अखलाक सिखाए। नबी सल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन अतिया जो कोई माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं वो बेहतरीन अखलाक है, और वो सहाबे कराम की जिंदगी थी। वो इंतजार नहीं करते थे कि अच्छा सब चल पड़े फिर चलेंगे, अमूमन होता है ना काफिला चलता है तो इसीलिए आधा घंटा लेट हो जाता है, कोई निकल ही नहीं रहा था। आप देखें एक जाके गाड़ी में बैठ जाए ना तो उसकी शर्म में दूसरा भी जाने लगता है, फिर तीसरा भी, ऐसा होता है ना कभी कोई मौके पे आपने देखा होगा। नेकी में पहला कदम मेरा, मुझे पीछे नहीं रहना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल आप सबने सुना होगा, कहते हैं मैं हमेशा इस ताक में रहता कि मैं अबू बकर सिद्दीक से पहले पहुंच जाऊं, लेकिन मैं कभी ना वापस आया, कभी आगे ना गया, हत्ता कि तबूक का मौका आ गया और जिहाद की कॉल आई, जो है घरों में ले आओ और फर्ज ऐन हर एक को निकलना है, सब कुछ लाना है क्योंकि दुश्मन से मुकाबला। कहते मैंने कहा आज तो बस मैं अबू बकर को मात दे दूंगा, अपने घर का आधा सामान लेके गए, लेकिन कहते हैं मेरी खुशी सब खत्म हो गई जब मैंने देखा कि अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा सामान लेके बैठे हैं, और अल्लाह के नबी कह रहे हैं अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो? कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। उनके बाप नबीना थे, कहते हैं मैंने अबू बकर को देखा छड़ी मार मार के दीवारों को देख रहे कि कोई चीज रह तो नहीं गई, उसको ले जाओ। अच्छा यहाँ एक गलतफहमी दूर कर दूं, कोई मत सोचे कि अबू बकर का सामान चार ट्रकों पे आया होगा इसलिए उसकी कदर है, पूंजी इतनी सी, लेकिन बात क्यों बनी? जो है वो ले आया हूं, मेरा काम क्या है जो मेरे पास है मैं वो लेके आया हूं, नहीं है बहुत तो नहीं है। कभी आपने सुना आज तक अबू बकर ने क्या दिया? कभी सुना? बात क्या आती है? जो था वो ले आया। क्यामत के दिन हमसे क्या मांगेगा रब? तेरे पास क्या था? ये नहीं पूछेगा कितना था, तू बता तेरा क्या था, उसमें से कितना दिया, जो मैंने तुझे दिया था उसमें से क्या दिया। और यही लोग होते हैं पायनियर्स, आगे बढ़ने वाले। फस्तबिकुल खैरात, فسارعوا الى مغفرة وجنة ارضها كعرض السماوات والارض. رات کو ہم نے اپنی تفسیر کی کلاس میں آیت پڑھی ہے, نیکی کی طرف دوڑ لگا دو, بھاگو جلدی کرو, نکل نہ جائے. کبھی ہم نے کسی نے باہر کے ملک جانا ہوتا ہے نا اور فلائٹ کنفرم ہوتی ہے, اور اگر ہم گھر سے لیٹ نکلیں تو کیا حال ہوتا ہے, کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچتا ہے. کیوں؟ فلائٹ چلی جائے گی, مس ہو جائے گی, بالفرض ہو گئی مس, کیا گیا, اگلے میں دے دیں گے, چلو نہیں دیتے ایک اور ٹکٹ لے لو گے. لیکن اگر جنت مس ہو گئی, اگر وہ مقام مس ہو گئے تو کیا بنے گا. اصل بات کیا ہے کہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, کام سے بات بنتی ہے. جو کرے گا وہ جیے گا, وہ آگے بڑھے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر معاشرے میں ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں, تبھی تو لوگوں کو اجنبی لگتے ہیں. غربا سنا ہوا نا آپ نے, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اتنے تھوڑے ہوں گے, یعنی جو اصل دین پہ آئیں گے لوگ ان کو اجنبی سمجھیں گے, لوگ ان کو دیکھ کے کہیں گے یہ کہاں سے آ گئے, یہ مجنو دیوانے. لیکن فتوبہ للغربا. پھر یاد رکھیے کہ اسلام ہمیشہ ایک ہی چیز نہیں مانگتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ساری زندگی میں نے ایک ہی کام کرنا ہے, نہیں. کبھی آپ کو مہاجر بننا پڑے گا اور کبھی آپ کو انصار بننا پڑے گا, کبھی جان دینی پڑے گی تو کبھی مال دینا پڑے گا, جیسی ضرورت ہے. مال کا وقت آتا ہے تو مال اہم ہے, اور کبھی جان کی ضرورت پڑے تو آپ کے نہیں میرا مال لے لیں, کیا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے, گیارہواں پارہ آپ نے سنا ہوا نا, اس کے شروع یا تذرونا الیک, یعنی کچھ لوگ تھے جب تبوک کی جنگ کی بات ہوئی تو خود نہیں گئے, بڑی بڑی ڈونیشنز بھیج دی کہ ہماری طرف سے یہ قبول کیجئے. آپ کدھر ہیں؟ نہیں, ہماری فصلیں پکی ہوئی ہیں, ابھی آج کل کاروبار تیز ہے, اور آج کل کیسے آئے, بزنس کے دن ہیں, ہوتے ہیں کہ نہیں. ہم کلاس میں مہینوں نہیں آتے, اب تو مجھے نام یاد ہو گئے کچھ لوگوں کے, یہ فلاں سے فلاں مہینے میں نہیں آئے گی. کیوں؟ کہ ان دنوں بزنس کے دن ہیں, ان کو ہیلپ کرنی ہے. اور کوئی کہہ کے تو دیکھے, یہ تو گستاخی ہے کہ آپ کلاس چھوڑ کے کام پہ گئے. ہاں جی, یہ فرض ہے شوہر کی خدمت, ٹھیک ہے, میں کسی کا مذاق نہیں کر رہی, لیکن فرق صرف اسی میں ہے کہ اگر واقعی کام کرنا ہے تو پھر اس کے لیے عزم اور حوصلہ چاہیے. عموماً کام کیوں نہیں ہوتا؟ چار چیزیں بس اس پہ بات ختم کروں گی. کام کون لوگ کرتے ہیں؟ عموماً جو کام نہیں ہوتے اس میں ایک بہت اہم چیز دیکھی گئی ہے. ہر بندہ نیکی کا جذبہ دل میں رکھتا ہے, مجھے کام کرنا ہے, پھر کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں شکایت ہے. جو کام کرتا ہے اس سے ہمیں شکایت ہے. مثال ہے کہ آپ مسجد ہے کوئی آپ کے پاس, آپ اس مسجد میں کام کرنا چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کچھ والنٹیئر کی ضرورت ہے, کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے. عموماً کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, وہ جو وہاں کے امام صاحب ہیں نا, ہمیں ان سے کافی شکایتیں ہیں, لہذا ہم نہیں کر رہے. یا کوئی اور بھی کام. آپ یہ بتائیے, دنیا میں کہیں شکایت ایسا ہو سکتا ہے کہ شکایت کسی کو کسی سے نہ ہو؟ میں تو سچ کہوں گی کہ لوگوں کو ان سے زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. جو کرے گا اسی پہ نقص نکلے گا نا, جو کرتے نہیں وہ تو اچھے ہیں. سچ ہے کہ آپ کھانا پکاتے ہیں تبھی تو نقص نکلتے ہیں نا. آپ جس کے بچے جس نے کھانے میں بہت نقص نکالے نا, تو اس کے اگلے دن آپ کچھ نہ پکایا کریں, ایک نقص نہیں نکلے گا, لیکن ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ آج کے بعد ہم نے نقص نہیں نکالنے. اور بعض دفعہ تو لوگوں سے فائدہ اٹھا کے بھی ہم سے ان سے شکایتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ شکایتی رویہ جو ہوتا ہے نا, یہ انسان کی زندگی سے عمل نکال دیتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کبھی بھی مکمل کسی کے ساتھ ہارمنی نہیں ہو سکتی. مثلا شوہر, چلیں اس کو شوہر اور بیوی پہ دیکھ لیں. آج کے دور کا عموماً مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر سے شکایات بہت ہیں, پھر طلاق تک بات چلی جاتی ہے, گھر الگ ہو جاتے ہیں. سسرال والوں سے الگ ہم کیوں رہتے ہیں؟ شکایتیں بہت ہیں. اور سسرال والے بہو کو ساتھ کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ ان کو ان سے شکایتیں بہت ہیں. حکمرانوں سے ہمیں شکایتیں, ذرا میرے سے لسٹ بنائیں گے چند لوگوں کی کہ ہمیں کہاں کہاں شکایتیں آج کل. حکمرانوں سے ہیں, دکانداروں سے ہے, چیزیں بڑی مہنگی ہیں, رشتہ داروں سے جزاک اللہ خیر بڑی شکایتیں, بس ایسے ہی ہیں. اور کس سے شکایتیں ہیں؟ استادوں سے شکایتیں ہیں. ماشاء اللہ, بالکل انہوں نے سچ بولا, بڑی شکایتیں. بہت لمبا پڑھاتے ہیں, چھٹی نہیں دیتے, ٹیسٹ بڑے لیتے ہیں, بولنے نہیں دیتے, کھانے نہیں دیتے. چلے, اور کوئی آپ میں سے بولے औलाद से शिकायतें, हाँ बहुत बहुत जेन्युइन शिकायत है हर बंदे की जुबान पे, और हाँ मासियों से शिकायतें, मेट्स ठीक है, अब यहाँ मासी तो ना कहें आप, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया, आप देखिए कि इसी दुनिया में जीना पड़ेगा, इसी शिकायतों के बीच में रहना है, इसी के साथ ही काम करने हैं। जो बंदा किसी से कट जाता है ना, वो उसकी खैर से भी महरूम हो जाता है। आपको किसी, जैसे मिसाल अपने मेड की मिसाल दी, आपको अच्छी नहीं लगी उसका काम, वो कहते भागो निकलो, मुझे नहीं काम कराना तुमसे, मेहरबानी आपकी। अगले दिन क्या हो रहा होता है, आप कहते हैं हाय ना ही निकाला होता, चलो कुछ तो करती, फिर पता चलता है वो क्या करती थी। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जब कोई नहीं रहता तो पता चलता है वो क्या करता था। एक औरत थी, नबीना थी, अपने घर का काम नहीं कर सकती थी, और उसने क्या देखा, उसको नहीं पता, लेकिन उसको ये पता था कि फजर की नमाज के बाद कोई मेरे घर में आता, मेरे घर में झाड़ू लगाता, मेरा पानी भरता और मेरा खाना पका के रख जाता, ना मुझे अपना नाम बताता, ना मुझसे कोई पैसे मांगता, कुछ नहीं, और चला जाता है, उसको नहीं पता। और आपको पता कि उसको किस दिन पता चला वो कौन था, जिस दिन वो शख्स फौत हो गया। और वो शख्स कौन थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उलाइकहुम अल-मोमिनून हक्का। ये नहीं है कि किस हर मैदान में भागने वाले, आगे चलने वाले। और आप देखिए मुकाम क्या मिला, कि जिंदगी भर तो नबी सल्लम के साथ थे ही, क्यामत तक कब्र भी साथ मिली, और जन्नत में साथ क्यों ना मिलेगा। बल्कि मेराज के सफर में जब नबी सल्लम गए तो वहां अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते की शक्ल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बना दी, कि चूंकि वो जमीन पे साथ थे तो यहां भी उनका साथ तुम्हें महसूस हो, तन्हाई महसूस ना हो आपको। जहां कहते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हटे सिदरतुल मुंतहा के आगे, तो वहां आप हजरत अबू बकर गए तो उन्होंने एक देखा अबू बकर सिद्दीक की शक्ल का कोई खड़ा, तो असल में वो फरिश्ते थे जिनकी शक्ल बदल दी। ये मेराज के सीडी में आपने सुना होगा, सुभान अल्लाह, आप देखिए अल्लाह अकबर। तो असल बात क्या है कि इंसान को एक चीज क्या हटाती है, शिकवा, शिकायत। दूसरी चीज अमूमन जो इंसान को दीन के काम नहीं करने देती वो क्या होती है, नाजुक मिजाजी। मैं बहुत सेंसिटिव हूं, सुना भाई ये जुमला, तो फिर उसके आगे जाके ये लिख लीजिएगा कि सेंसिटिव लोग दीन का काम नहीं कर सकते, वो लोगों को फायदा नहीं दे सकते। जो अपने बुत को पूजते रहेंगे ना, वो बस खुद को ही सजाएंगे। तीसरी चीज एक और होती है जो अमूमन एक उजर के तौर पे पेश किया जाता है, नफासत पसंदी। मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूं, जब तक मैं पूरे घर
की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको। मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया
يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنا عاجز بندہ بنا. یا اللہ ہم سب سے وہ کام کرا جس سے تو راضی ہو جائے, اس چیز سے بچا جس سے تو ناراض ہو. یا اللہ ہماری ان تمام بہنوں پہ اپنی رحمت فرما, یہ تیری بات کے لیے آئیں, انہوں نے تیری بات کو سنا. یا اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے, ہمیں اس کے ایک ایک لمحے سے ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھانے والا بنا. یا اللہ ہمیں اس خیر کے حصے میں اپنا حصہ ڈالنے والا بنا. یا اللہ ہم جو بھی نیکیاں کریں, جو بھی ارادے کریں, یا اللہ تو ہمیں اس میں استقامت دے اور اس کا بہترین اجر عطا فرما. یا اللہ اندھیروں میں ہماری ذات سے روشنی پھیلا دے. یا اللہ قرآن کے اس نور کو عام کر دے, قرآن کے اس نور کو عام کر دے. یا اللہ تیرا کام ہو کے رہے گا, اس میں ہمارا حصہ ڈلوا دے. یا اللہ محروم لوگوں میں سے نہ کرنا, بدبخت لوگوں میں سے نہ کرنا, ان میں سے نہ کرنا کہ جو جن پہ بارش برس بھی جائے تو پھر بھی سوکھے رہیں. یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا شاید یہ آخری رمضان ہو. یا اللہ ہمیں اتنے کام اچھے کروا لے کہ ہماری بخشش ہو جائے. یا اللہ ہمارے گھروں کو قبرستان نہ بنانا. یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر اور رحمت آئے, تیری رحمت کے فرشتے اتریں, خیر کے سوتے پھوٹیں. یا اللہ ہم سب کو اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما, جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ان کو صحت اور عافیت عطا فرما. یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کو بخش دے. ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمتیں فرما. یا اللہ جو قبروں میں جا چکے ان کی قبروں کو منور کر دے. یا اللہ ہماری نیکیاں ان کے لیے روشنی بن کے وہاں جائیں. یا اللہ ہم سب جب تیرے پاس جائیں تو یا اللہ تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ ہمیں انہی لوگوں میں کر دے جن کے لیے تو نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا, سچے مومن کر دے. یا اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ہمارے لیے بھی اس بات کو ثابت کر دے. یا اللہ جو نہیں آ سکے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے, یا اللہ ان کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما. یا اللہ جو جہاں سے جتنی دور سے آیا اس کو اتنی بڑی جزا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.